राम राम हरे हरे,
राम राम हरे
हरे, हरे कृष्ण। तो जन्माष्टमी की आप सबको बधाई हो। प्रतिवर्ष भगवान श्री कृष्ण के जन्म का उत्सव हम मनाते हैं। क्यों? रात को 12 बजे तक जागते हैं। क्यों? प्रश्न अपने आप से पूछना चाहिए कि अगर हम प्रतिवर्ष ये उत्सव मनाते हैं, रात को 12 बजे जागते हैं और झूले के अंदर गोपाल को झुलाते हैं, क्यों? हमारा कोई उसके साथ रिश्ता है तब न? किसी के साथ रिश्ता होता है तब आदमी थोड़ा सा परिश्रम करके रात को जागता है, उसको देखने के लिए जाता है, उसके बारे में सुनना चाहता है। क्यों? क्योंकि रिश्ता है ना। तो जन्माष्टमी मनाने का उद्देश्य है कि हमारा भगवान श्री कृष्ण के साथ कोई रिश्ता है। जब श्री कृष्ण का नाम हम लेते हैं जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में, तो एकदम हमारे विचार में किसका नाम आता है? थोड़ा कम करना चाहिए आवाज। हाँ, कृष्ण का नाम लेंगे तो क्या नाम साथ में आपको याद आता है एकदम? हाँ जी, जन्माष्टमी है, कृष्ण का प्रकट्य है, तो क्या नाम याद आता है एकदम? बोलिए, कहाँ प्रकट हुए कृष्ण? किसके पास, किसके घर में? हाँ जी, वासुदेव का नाम याद आता है, देवकी का नाम याद आता है, तो क्या रिश्ता था इनका भगवान के साथ? माता पिता थे भगवान के। अरे भगवान तो जगत का पिता है, उसका कोई माता पिता कैसे हो सकता है? भगवान तो जगत का पिता है, ये सृष्टि भगवान से बनती है, तो भगवान का कोई पिता तो नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी प्रेम के रिश्ते के कारण भगवान बेटा बन जाता है, किसी भक्त को माता पिता बना देता है। तो हम भगवान की जन्माष्टमी मनाते हैं, देखते हैं कितना सौभाग्य वसुदेव और देवकी का है कि भगवान उनकी गोद में बच्चा खेल रहे थे। दूसरा कौन सा नाम याद आता है एकदम? नंद यशोदा याद आता है ना, नंद यशोदा का नाम। कितना भाग्यशाली है नंद यशोदा के पूर्ण ब्रह्म जिसकी उपासना करते हैं योगी लोग, देवता जिसके दर्शन के लिए बहुत बड़े प्रतीक्षा करनी पड़ती है, उनको मिलता नहीं है और उनके घर में वो खेल रहा है बालक की तरह। क्यों? क्योंकि उनने रिश्ता बनाया है भगवान के साथ, संबंध प्रेम का बनाया है। तो हमारा भगवान श्री कृष्ण के साथ एक संबंध है। अब जन्माष्टमी हर साल मनाने के पीछे हमारा ये उद्देश्य है कि उस संबंध को हम पुनः स्थापित करें जिसको हम भूल गए हैं। उत्सव मनाने के पीछे हमारा लक्ष्य है, हमारा जो ऑब्जेक्ट है कि हमारा और कृष्ण का कोई रिलेशन है, उस रिलेशन को दोबारा रिवाइव करना है, हम भूल गए हैं। तो हर वर्ष जन्माष्टमी हमको ये याद दिलाती है कि ये भगवान बहुत प्रेम करने वाला है, ये इस संसार के संकट को दूर करने के लिए आया था। और वहां शब्द लिखा है भागवत में, भक्तानाम अभयंकर, अपने भक्तों के भय को नाश करने के लिए आता है। इस दुनिया में सबसे बड़ा भय क्या है? इस दुनिया में सब लोग जी रहे हैं, एक भय सबके पीछे लगा हुआ है। इस संसार का नाम मृत्यु संसार है और इस संसार में सबसे बड़ा भय मृत्यु का है। और देवकी को कंस मारने जा रहा था, आप कथा सुनेंगे तो, किस दिन मारने जा रहा था? मंगल विवाह का कार्य हुआ था, शादी वसुदेव के साथ हुई थी, रथ के ऊपर अपने घर पहली बार जा रही थी और रास्ते में ही आकाशवाणी का आवाज सुनकर कंस देवकी को मारने लगा। तो मृत्यु का भय देवकी के सर के ऊपर कंस रूपी क्रूर व्यक्ति का क्रूअल था, लेकिन क्योंकि वो भगवान के भक्त थे, क्योंकि कृष्ण भक्त थे, तो कंस जैसा शक्तिशाली व्यक्ति भी देवकी को मार नहीं सका। तो मृत्यु का भय उनका कैसे टला, क्यों टला? क्योंकि वो भगवान के भक्त थे। तो जन्माष्टमी मनाने के पीछे हमारा लक्ष्य है कि हम भगवान के भक्त बने। हमारा और भगवान का रिश्ता यही है कि वो भगवान है, हम उनके भक्त हैं। और यही बात श्री कृष्ण भगवान भगवत गीता में कहते हैं, भव मद भक्त, आप मेरे भक्त बनो। अर्जुन, मैं आपको ये अविनाशी ज्ञान गीता का इसलिए दे रहा हूं क्योंकि भक्तोसि मे सखा चेति रहस्यम हि तद उत्तमम। इस उत्तम रहस्य को, कौन सा उत्तम रहस्य? उत्तम रहस्य का मतलब मोस्ट कॉन्फिडेंशियल थिंग, गुप्त से गुप्त चीज। आपको, आप इस रहस्य को जानते हैं। क्या रहस्य जानते हैं? कि मैं तुम्हारा मित्र हूं। भगवान होते हुए भी, त्रिलोकी नाथ होते हुए भी, अखंड ब्रह्मांड नायक होते हुए भी, मैं अर्जुन तुम्हारा मित्र हूं और तेरी सहायता के लिए तेरे रथ का सारथी बनाऊं। कभी कभी लोग कहते हैं भगवान के हम बराबर बनना चाहते हैं, लेकिन भगवान के बराबर बनने से भक्त भगवान से बड़ा बन जाता है। अर्जुन ऊपर बैठा है और भगवान नीचे बैठे हैं, घोड़े आंक रहे हैं। भक्त के लिए भगवान छोटा बन जाता है। क्यों? भगवान को छोटे बनने में की परवाह नहीं। इस दुनिया में हम बड़ा बनना चाहते हैं, हमको कोई छोटा कहेगा तो हमको बहुत बड़ा दुख होगा, लेकिन भगवान बड़े होते हुए भी छोटे होने में आनंद लेते हैं। भगवान सबसे बड़े हैं, लेकिन वो छोटे बालक बनते हैं और नंद बाबा बोलता है, कन्हैया मेरी चप्पल लेकर आओ, और छोटा सा 3 साल का कन्हैया चप्पल उठाता है और ऐसे छाती से लगाता है और लाके पिताजी को दे देता है। तो भगवान का भक्त भगवान से बड़ा बन जाता है, भगवान का पिता बन जाता है। तो भक्त को ये बहुत बड़ा सौभाग्य है, इसलिए भगवान कहते हैं मेरे भक्त बनो। हमारी जन्माष्टमी मनाने के पीछे लक्ष्य ये है कि एक दिन जो हमारा भगवान के साथ भक्त, भक्त का मतलब है प्रेम करने वाला। भक्त उसको कहते हैं जो भगवान से प्रेम करता है और उस प्रेम के लिए वो सब कुछ सहने को तैयार है। उस प्रेम के कारण वो भगवान को प्राप्त करने के लिए सब कुछ बलिदान देने को तैयार है। भगवान आएंगे ये विश्वास है। तो हमारे जन्माष्टमी मनाने का लक्ष्य है कि हम भगवान के भक्त बने, इस जन्म में भगवान के भक्त बने। तो वही भगवान श्री कृष्ण जो अर्जुन के रथ के ऊपर सारथी बन के महाभारत के युद्ध से उसको पार किया था, वही कृष्ण हमारे शरीर रूपी रथ का सारथी बनकर हमको भी भवसागर से पार करेंगे। वो कृष्ण कहीं गए नहीं है, कृष्ण आज भी इस वक्त यही है, केवल हमको दिखते नहीं है क्योंकि हमको उनको देखने की अभी इतनी प्यास नहीं उत्पन्न हुई है। जिस दिन प्यास उत्पन्न होगी उस दिन भगवान को देखने के लिए देर नहीं लगेगी। प्यास पैदा करनी है, और प्यास कैसे पैदा होगी? प्यास का मतलब हैंकरिंग फॉर सीइंग कृष्ण, भगवान से प्रेम करना भगवान को बुलाने का साधन है। प्रेम कैसे भगवान से हो? भगवान की कथा सुनने से। जब भगवान की करुणा और कृपा, दया और भक्त वत्सलता की कथा सुनेंगे, अरे इतना बड़ा भक्तों से प्रेम करता है भगवान, उनकी रक्षा करने के लिए आ जाता है। एक दिन भी 18 दिन के युद्ध में अर्जुन को पसीना नहीं आया था। भगवान उनका इतना ध्यान रखते थे कि इतनी परिश्रम करे लेकिन पसीना नहीं, एक दिन केवल पसीना आया था। 10वें दिन भीष्म पितामह भयंकर युद्ध कर रहे थे और प्रतिज्ञा करके आए थे कि आज कृष्ण का वचन तोड़ूंगा या अर्जुन का वध कर दूंगा, और कृष्ण ने मुड़ के देखा कि पसीने को पहुंच रहा है आज से अर्जुन, इतना कष्ट भी अपने भक्त का देख नहीं सके। घोड़े की बाग छोड़ के कूद के रथ से नीचे उतरे और भीष्म पितामह के ऊपर रथ का पहिया उठा के मारने को चले। भीष्म पितामह अस्त्र शस्त्र नीचे रख के, मुझे इच्छा मृत्यु का वरदान तो मेरे पिता ने दिया है, आज मैं इच्छा करता हूं, ऐसा और मौका मरने का कब मिलेगा, भगवान साक्षात सामने आ रहे हैं। उस दिन भीष्म ने मरने का विचार कर लिया, इच्छा मृत्यु थी, कोई नहीं मार सकता था भीष्म को, अर्जुन भीष्म को मार सके ये संभव नहीं था, तो कोई भी नहीं मार सकता था। लेकिन जैसे ही दर्शन कृष्ण के दया के किए और स्वयं भीष्म कहते हैं मेरे वचन की रक्षा करने के लिए अपना वचन तोड़ दिया भगवान ने, भक्त के वचन की रक्षा करने के लिए अपना वचन तोड़ दिया, इतना बड़ा दयालु है वो, तो अपने एक भक्त अर्जुन का एक पसीने की बूंद भी भगवान देखने को तैयार नहीं थे, क्योंकि वो भक्त था। तो हमारे जन्माष्टमी मनाने के पीछे ये धारणा होनी चाहिए कि हमें कृष्ण के भक्त बनना है, तो फिर हमारे सारे संकट दूर हो जाएंगे। कैसे? वसुदेव और देवकी के वहां भगवान श्री कृष्ण कैसे प्रकट हुए थे, ये शास्त्र की नजर से देखना चाहिए, इसको बोलते हैं शास्त्र चक्षु, शास्त्र की आंख से देखना चाहिए। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मेरा जन्म दिव्य है, संसार के बालक की तरह मैं जन्म नहीं लेता हूं। तो दिव्य कैसे है? भागवत में लिखा है भगवान श्री कृष्ण वसुदेव के मन में प्रकट हुए, और जैसे ही भगवान श्री कृष्ण वसुदेव के मन में आए, वसुदेव चमकने लगा जैसे सूर्य का उदय हुआ हो। आपने देखिए कभी फोटो बनाते हैं भगवान के, उसके चारों ओर से प्रकाश होता है, साधु संत महात्माओं का फोटो होता है उसके चारों ओर प्रकाश दिखाते हैं, उसका अर्थ क्या है कि इसने अपने हृदय में भगवान को धारण किया है। जिसके हृदय में भगवान प्रकाश हो जाते हैं, प्रकाशित होते हैं, प्रकट होते हैं, उसमें से प्रकाश निकलता है, ऐसे महात्मा अपने आप चमकते रहते हैं क्योंकि भगवान हृदय में आ जाता है। और फिर भागवत लिखती है वो भगवान जो वसुदेव के हृदय में प्रकट हुआ था, वसुदेव ने उस भगवान को देवकी के मन में स्थापित कर दिया। तो एक दे रहा है एक ले रहा है भगवान को, गुरु देता है शिष्य लेता है। गुरु जब शिष्य को मंत्र देता है तो अपने दिल में प्रकट किया हुआ भगवान अपने शिष्य के हृदय में स्थापित करता है, इसको बोलते हैं दीक्षा। ये सनातन परंपरा है। वसुदेव ने अपने मन में प्रकट किया हुआ श्री कृष्ण जो उनके ऊपर कृपा करके उनके हृदय में आया था, क्यों आया था? क्योंकि भगवान को पाने के लिए उन्होंने अपने 6-6 बच्चों को अपनी आंखों के साथ सामने कंस के द्वारा मारते देखा था। दे हैव पेड ए प्राइस फॉर गेटिंग कृष्ण एज ए सन। उन्होंने कृष्ण को पुत्र रूप में प्राप्त करने की प्राइस बड़ी उदारता के साथ दी थी। दे सफर्ड एनीथिंग, जो भी कष्ट आया उन्होंने सहा था क्योंकि कृष्ण आएगा। कृष्ण की प्राप्ति के लिए दे पेड द प्राइस। इसलिए भगवान अपनी इच्छा से प्रकट हुए थे। योगियों की तरह वसुदेव ने बैठ के ध्यान नहीं किया था भगवान का, भगवान अपने आप उनके मन में आए थे अपनी इच्छा से, और देवकी के मन में भगवान का प्रकट्य हुआ और देवकी भी प्रकाशमान होने लगी। वो भगवान देवकी के मन से देवकी के उदर में आए, कंस मिलने आया, देवकी को देख के आश्चर्य हुआ। पहले तो अंधेरा होता था जेल की कोठरी में, आज जेल चमक रही है, देवकी खुश क्यों दिख रही है, इसके 6 बच्चे पहले भी मैंने देखे, तब तो देवकी रोती थी, दुखी होती थी, आज देवकी खुश क्यों है? इसलिए खुश है कि भगवान उनके मन में आ गए हैं। और इस देवकी को देखकर कंस का मन बदल गया। कंस का क्या मन बदल गया? कंस ने कहा इसको कैसे मैं मारूं, ये तो स्त्री है, गर्भवती है, इसको नहीं मारना चाहिए। वही कंस अपनी बहन को शादी के दिन मारने को तैयार था। क्यों उस दिन मारने को तैयार था? क्योंकि उस दिन कृष्ण उनके हृदय में प्रकट नहीं हुए थे। आज कृष्ण हृदय में प्रकट हुए, आज कंस कहता नहीं मारूंगा। कंस देवकी के सत्संग से जिसके हृदय में कृष्ण प्रकट हुआ था, अपना विचार बदल दिया। और तब सारे देवता ब्रह्मा शंकर जी नारद आदि को लेकर उस जेल खाने में आए, उस कारागृह में आए, उस गर्भ में आए हुए कृष्ण की स्तुति करने के लिए। दूसरा अध्याय 10वें स्कंद का है, देवताओं के द्वारा गर्भस्थ कृष्ण की स्तुति। तो ब्रह्मा आदि देवता शंकर आदि भगवान के गर्भ में प्रकट होने के ऊपर स्तुति करने आए। और फिर कृष्ण उनके जाने के बाद एकदम वसुदेव और देवकी के सामने चतुर्भुज रूप में शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए, मुकुट पहना हुआ, कानों में कुंडल है, माला पहनी हुई, पीला पीतंबर पहना हुआ प्रकट हुए। तो ये कोई साधारण बच्चा तो नहीं प्रकट हुआ। और प्रकट होने के बाद वसुदेव और देवकी को बताया कि तुम्हारे तो दो बार में बेटा पहले हो चुका हूं, तुमने तपस्या की थी मुझे प्राप्त करने के लिए, मेरे जैसा बेटा तो कोई है, कोई और है नहीं, तो मैं अपने वचन को सच नहीं कर रहा था जिसे मैं 3 बार आपका बेटा बनाऊं। पहले मैं कृष्ण गर्भा बना, फिर मैं वामन देव बन के आया, आज मैं आपके घर में वसुदेव कृष्ण कृष्ण बन के आया हूं। वसुदेव देव की ओर कहा कि मुझे यहां से ले चलो, नंद गोकुल में छोड़ के आओ। तो अब मैं बात यहां करने जा रहा था, जो भगवान को हृदय में धारण करता है उसके सब दुख दूर हो जाते हैं, बंधन कट जाते हैं। कैसे? आज वसुदेव ने कृष्ण को उठाया है, छाती से लगाया है। ऐसे बच्चे को उठाते हैं जैसे मां बच्चे को उठाती है, छाती से लगाती है। कृष्ण वाहक वसुदेव, भागवत लिखती है कृष्ण को वसुदेव ढोके जा रहा है, जैसे गाड़ी के ऊपर कोई सामान रखते हैं उसको वाहन बोलते हैं। आज वसुदेव कृष्ण का वाहन बना है, उसको दिल में उठाने वाला बना है। जैसे ही कृष्ण को वसुदेव ने दिल से लगाया, वसुदेव की हाथ की हाथकड़ी खुल गई, पांव की बेड़ियां खुल गई, जेल के दरवाजे खुल गए, ये सब बंधन एकदम कैसे कट गए? केवल कृष्ण को छाती से लगाने से। जो भक्त कृष्ण को हृदय में धारण करता है उसके संसार के बंधन ऐसे कट जाते हैं जैसे वसुदेव के कट गए। घोर बरसात हो रही है, अंधकार है, जमुना समुद्र की तरह छोली मार रही है, लेकिन वसुदेव ने उसका भय नहीं किया। भगवान साथ है तो भय काय का? जमुना ने रास्ता दे दिया, और भागवत में लिखा है ऐसे रास्ता दिया जैसे समुद्र ने श्री रामचंद्र को रास्ता दिया था, जैसे पहले समुद्र ने रामचंद्र को सेतु बनाने के रास्ता दिया था, ऐसे जमुना ने वसुदेव को रास्ता दे दिया, क्योंकि कृष्ण के पिता है। तो ये बात कहने के पीछे अभिप्राय है कि हम जब जन्माष्टमी में मनाए तो भगवान श्री कृष्ण का भक्त बन के उसको हृदय में। हमारी जन्माष्टमी कब होगी? हर साल मनाते मनाते एक दिन भगवान हमारे मन में भी प्रकट होंगे, जैसे वसुदेव के मन में हुए। एक दिन वही भगवान हमारे हृदय में प्रकट हो, ये हमारी जन्माष्टमी है। कब वो दिन आएगा, कौन से वर्ष की जन्माष्टमी में हमारे मन में कृष्ण प्रकट होंगे, वो हमारी असली जन्माष्टमी होगी। ये जन्माष्टमी उस जन्माष्टमी की प्राप्ति का हमारा अभ्यास है, रिहर्सल कर रहे हैं हम कि एक दिन भगवान हमारे हृदय में प्रकट हो, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। सिर्फ उत्सव की तरह मना के चला जाना ये रिचुअल हो जाता है, इसको अंग्रेजी में रिचुअल कहते हैं। ये तो एक नेमावली हो गई। भगवान नेम से नहीं प्रसन्न होते, भगवान प्रेम से प्रसन्न होते हैं। और प्रेम भगवान को करने के लिए भगवान का भक्त बनना पड़ेगा। और भक्त की परिभाषा है भगवान से प्रेम करना वाला। और भक्त भगवान से अपना रिश्ता स्थापित करता है। चाहे यशोदा मैया की तरह बेटा मान लो तो बेटा बनने को तैयार है, अर्जुन की तरह अपना सखा मान लो सखा बनने को तैयार है, आप उसको प्रेमी अपना मान लो तो वो प्रेमी बनने को तैयार है, अपना मालिक मान लो हनुमान की तरह दास बन जाओ तो वो मालिक बनने को तैयार है। लेकिन इनमें से एक आधा रिश्ता आप सबका श्री कृष्ण के साथ है। इस रिश्ते को याद करने के लिए, दोबारा स्थापित करने के लिए जन्माष्टमी मना के भगवान की कथा सुनने का प्रयास करते। ऐसी कथा तो गा के कई बार सुनी होगी आपने, लेकिन हमारे हृदय में कब प्रकट होंगे तभी हमारा जीवन सफल होगा। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, हर जन्माष्टमी में कोई संकल्प करना चाहिए कि एक दिन कृष्ण हमारे हृदय में भी आना, इस जीवन में हम आपको पाना चाहते हैं, हम आपसे प्रेम करना चाहते हैं। और उसके लिए प्रतिदिन कृष्ण को याद करने का नियम बनाना पड़ेगा, रोज कृष्ण को याद करने का नियम बनाना पड़ेगा। प्रतिदिन अभ्यास करो कृष्ण के नाम उच्चारण करने का। कृष्ण और कृष्ण के नाम में कोई अंतर नहीं है। संसार की चीज पानी और नाम पानी में अंतर है। पानी पानी करने से प्यास नहीं बुझेगी, लेकिन कृष्ण कृष्ण करने से कृष्ण आ जाएगा, क्योंकि कृष्ण और उसके नाम में अंतर नहीं है, वो एब्सोल्यूट है, उसमें कोई अंतर नहीं है। द्रौपदी ने कृष्ण ही पुकारा था और कृष्ण वहां साड़ी के रूप में प्रकट होकर उसकी लज्जा बचाई थी। तो संकट में ही घड़ी में बुनाने वाले के पास गजेंद्र हाथी ने केवल गोविंद कहा था, गो कहा था, भगवान तो वैकुंठ में था विंद से पहले वहां आके और उसका उद्धार भी कर दिया और मगरमच्छ का गर्दन भी काट दिया। तो आतुर भाव से एक बार भगवान को बुलाने के ऊपर भगवान आने में देर नहीं करते। तो हमको भगवान को बुलाना कैसे चाहिए, प्रभुपाद जी कहते हैं जैसे छोटा बच्चा अपनी मां के लिए रोता है, जेन्युइन क्राई ऑफ ए चाइल्ड फॉर मदर। जैसे छोटा बालक अपनी मां के लिए रोता है जब भूखा प्यासा होता है, ऐसे जब हम भगवान के लिए रोएंगे, बच्चा, आप सबने बच्चों को तो आपने जन्म दिया है और पाला है, बच्चा रोता है उसके रोने को आप पहचानते हैं ना। एक रोना होता है मां के लिए, मां सब काम छोड़ के जाके उसको उठा लेती है गोद में। एक बच्चे का बनावटी रोना होता है, वो कुछ पैसा लेने के लिए होता है। उस रोने को भी माता पिता जानते हैं, दोनों रोनों को जानते हैं कि नहीं जानते हैं। एक था बच्चा, मां का रोया, मां रसोई में चूल्हे के ऊपर दूध चढ़ा हुआ था, आटा में हाथ डाला हुआ था, बच्चा रोया, आग के ऊपर दूध को छोड़ दिया, आटा दूध आला, हाथ से जाके बच्चे को उठाया, बच्चे को गोद में बिठाया, बच्चे को लड्डू दिया खाने के लिए, चुप किया और चकराया, फिर वापस जाके काम करने लगे। 15-20 दिन के बाद माँ कोई काम नहीं कर रही थी, बाहर बैठी हुई थी और बच्चा जोर जोर से रो रहा था, माँ जा नहीं रही थी। आधा घंटा बच्चा रोया, चिल्लाया, थका, वापस आके माँ को बोला, उसने एक बार रोया, आप भाग के आई थी, आज एक कितनी देर से रो रहा हूँ, आप आ नहीं रही है। माँ ने कहा, बेटा उस दिन तुम मेरे लिए रोया था, आज लड्डू खाने के लिए रो रहा है। तो असल में भगवान ये जानता है कि हम लड्डू खाने के लिए रो रहे हैं कि भगवान के लिए रो रहे हैं। प्रायः सब लोग मंदिर में जाते हैं भगवान से कुछ मांगने के लिए, वो लड्डू खाने वाले उनको लड्डू दे देता है, भगवान नहीं मिलता है, लड्डू तो दे देता है। आप माता जी आप देख लीजिए, आप बच्चे को क्या करेंगे, पहले क्या करते, रोते तो जाएंगे कोई खिलौना देंगे, झुंझुना बजाएगा, आप अपना काम करेंगे। ऐसे भगवान भी जब हम जाते हैं मंदिर में तो कहते, देखे झुंझने में काम चल जाता है, इसको गाड़ी एक दे दो, अच्छी घर दे दो, वो खुश हो जाएगा, जान छूटी हमारी। तो गाड़ी में और झुंझने में खुश हो गया तो भगवान बोले, चलो काम करने दो इसको, फिर भी रोने लगा, फिर भी आने लगा, तो फिर लड्डू देती है, ये लड्डू खाओ बेटा, ये टॉफी खाओ, ये चॉकलेट खाओ, फिर परिवार देगा, बच्चा देगा, मीठा मीठी बातें करने वाला सारा ऐसा समूह मिलेगा, तो भगवान को फिर वो नहीं जाए। उसके बाद भी अगर रोता है तो फिर माँ उस बच्चे को गोद में उठाती है और दूध पिलाती है, फिर सब काम छोड़ देती है। तो ऐसे जेन्युइन क्राय का मतलब है जब हृदय से हम भगवान के लिए पुकारेंगे, लेकिन वो पुकारा रोने जैसा होगा, आंखों में आंसू आएंगे कि तुम्हारे बगैर हम कब से तुमसे बिछड़े हैं, कई जन्मों से भगवान से बिछड़े हुए हैं, वही तो हमारा पिता है। क्या कहते हैं मंदिर में आके रोज, एक मंत्र सब पंडित जी आपको जपाते हैं, कभी सुना है? अब सबको आता है, तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधु च सखा तुमेव, तुमेव विद्या ध्रुवम तुमेव, तुमेव सर्वम मम देव। इस सारे मंत्र में क्या कहते हैं कभी सुना है, समझे सोचा है? तू ही हमारे पिता हो, तू ही हमारे माता हो, तुम ही हमारा मित्र हो, तुम ही हमारा बंधु हो, तुम ही हमारी विद्या हो, सब कुछ तुम ही और कोई नहीं है, इसका अर्थ ये है। लेकिन हम ये कहते हैं, लेकिन इसको कभी एव शब्द बहुत, इसमें सारे मंत्र में एव शब्द जो है ना वो सबसे मुख्य, तुम ही और कोई नहीं, एव का मतलब एक, आपके अलावा और कोई नहीं है। ये हम उच्चारण करते हैं, लेकिन वो ऐसे उच्चारण करते हैं उसको समझते नहीं कि तुम ही हमारे माता पिता हो, तुम ही हमारे बंधु सखा हो, तुम ही हमारे सब कुछ हो, सर्वम मम देव, मेरे तुम सब कुछ हो भगवान। ये कह तो देते हैं लेकिन दिल से इसको कभी स्वीकार नहीं किया। हम तो दुनिया के दूसरे सारे पिते, पिता पिता माता बंधु सखा उसमें फंसे हुए हैं, भगवान को कह तो ऐसे देते हैं लेकिन इसको कभी हमने माना नहीं है मन से कि वही हमारा है। जिस दिन हमने उसको ऐसे मान लिया उस दिन उसके आने में देर नहीं है। अगर उसका सखा मानोगे तो वह सखा बन के आ जाएगा, और ये कोई बहुत दूर की बात नहीं है। अभी 400-500 साल में ऐसे हजारों भक्त ब्रज में हुए हैं जिनको भगवान को पाया है, और आज भी भगवान को भक्त पा रहे हैं, कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन हमारी हृदय को इतना शुद्ध होना चाहिए। शुद्ध हृदय कब होगा? कृष्ण का प्रेम संबंध आप सबके हृदय में जन्म सिद्ध है, पहले आपके पास पड़ा है, कहीं और से लाना नहीं है। कृष्ण प्रेम, कृष्ण का जो आपका संबंध है, रिश्ता है, वो पहले से दिल में पड़ा है, कहीं बाहर से नहीं लाना है, केवल दिल को शुद्ध करना है। दिल शुद्ध कैसे होगी? हरि कथा सुनने से। मन पवित्र हरि नाम लिए, भगवान का नाम लेंगे, भगवान की कथा सुनेंगे तो हमारा हृदय पवित्र होगा। हृदय पवित्र होगा तो अपने आप वो प्रेम बाहर निकल आए। जैसे आंखों के सामने चीज होती है लेकिन दिखती नहीं है, क्योंकि आंख में जब कैटरेक्ट होता है ना, मोतिया होता है, तो सामने वाली चीज दिखती नहीं है। अभी हमारे को संसार के मोह का मोतिया है, इसलिए भगवान सामने है, दिखता नहीं है। जिस दिन किसी अच्छे आंख के डॉक्टर ने मोतिया को, कैटरेक्ट को निकाल दिया, किसी साधु संत ने आंख का जैसे मोह का पर्दा चाक कर दिया, तो भगवान सामने खड़ा है, कहीं दूर थोड़ी है। लेकिन ऑपरेशन करने की जरूरत है, ये मोतिया हमको कैटरेक्ट हो गया है भौतिक मोह का संसार में, और ये जन्माष्टमी मनाते हैं ये ऑपरेशन कराने के लिए आते हैं कि ये हमारा पर्दा निकल जाए ताकि भगवान सामने दिखे, हम उसको वरेण्यम, हम उसका वरण करें। गायत्री मंत्र में हम कहते हैं वरेण्यम, वर कहते हैं पति को, वरेण्यम का मतलब उसको गले मिलना। भगवान हम आपको गले मिलने चाहते हैं, कैसे? धीमही, हमारी बुद्धि के द्वारा। ये बुद्धि हमारी क्या है? बोला बुद्धि हमारी स्त्री है, भगवान तुम पुरुष हो, तुम्हारे को हम वरण करना चाहते हैं। बुद्धि रूपी हमारी स्त्री भगवान तुम्हारे चरणों में हम अर्पण करना चाहते हैं। धीमही का अर्थ ये है, बुद्धि कन्या है, वो अभी तक विवाह नहीं हुआ है, भगवान आप उसके पति हो, उसको वरण करो। भीष्म पितामह भी ऐसे ही कहता है कि मेरी बुद्धि रूपी कन्या भगवान तुम्हारे को अर्पण करता हूं, अब मेरा मन तुम में लगा रहे। तो जन्माष्टमी, इस जन्माष्टमी में आप ऐसा जरा संकल्प कर लो कि प्रतिदिन कृष्ण जिसका हम जन्म मना रहे हैं इसके नाम का उच्चारण करने का नियम बना लेंगे। अगली जन्माष्टमी तक कहो हम रोज का 10 मिनट भगवान का नाम ले लेंगे। अगली जन्माष्टमी तक आप आएंगे तो देखिए आपके जीवन में कितना परिवर्तन आया है। आप देखिए आपके हृदय में कृष्ण के प्रति कितना प्रेम बढ़ा है, हर साल ऐसे उसको बढ़ाते जाइए। कृष्ण का प्रेम बढ़ाएंगे तो संसार का मोह उतना कम होने लगेगा, और जितना वो कम होगा उतना कृष्ण प्रेम बढ़ेगा, रेसिप्रोकल चलेगा, ये इनवर्सली रेसिप्रोकल है। वो कम होगा तो वो बढ़ेगा, एक दिन हमारे प्रेम के कारण भगवान प्रेम के ऊपर चढ़ के हमारे प्रेम उनके सर के ऊपर चढ़ के बोलेगा और वो भगवान सामने आके खड़े हो जाएंगे, उस दिन हमारी जन्माष्टमी होगी। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, यहाँ शिवालय में आप लोगों ने जन्माष्टमी के उत्सव के दिन हमको सेवा का अवसर दिया। हरे कृष्णा, धन्यवाद। किसी का कोई प्रश्न है, कुछ जिज्ञासा है? आधा घंटा, मेरे ख्याल में 11 हो गए होंगे, हमने कहा टाइम 11 होगा कि नहीं, हो गया होगा। अगर किसी का कोई जिज्ञासा प्रश्न है तो, नहीं तो ठीक है, फिर आपको भी तो कल सुबह फिर कुछ